ओम शांति। हमारे हेम सिंह भाई जी ने बहुत सुंदर कमेंट्री के माध्यम से योग कराया। एक बार एक हाथ की ताली से हेम सिंह भाई का धन्यवाद अर्पित करेंगे। आप ज्ञान सरोवर की शुरुआत से ही आप समर्पित हैं यहाँ पर और अपनी सेवाएं सुरक्षा प्रभाग में यहाँ देते हैं। अभी हम सबको जिस घड़ी का इंतजार था, हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सबके मध्य आ चुकी हैं। दीदी जी का एक हाथ की ताली से सभी अभिवादन करेंगे और दीदी बहुत सुंदर अपने जीवन का अनुभव हम सबके साथ आज का जो विषय है उस पर प्रकाश डालेंगे। परम आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी।
ओम शांति। हमारी पढ़ाई के चार सब्जेक्ट है, ज्ञान फाउंडेशन, योग सबसे महत्व का, धारणा और सेवा। तो आज हमारा टॉपिक है सहज योगी जीवन। कहते तो है सहज योगी, सहज ज्ञान, पर ज्ञान समझने में भी 7 दिन का कोर्स और बाबा में निश्चय करने में भी कईयों को टाइम लगता है। मुझे 4 मास लग गया। और योग तो कई सालों तक लोग पूछते रहते हैं, हमारा योग ठीक है या नहीं, हमारा कंसंट्रेशन ठीक नहीं रहता है, मन इधर उधर भागता है। तो सहज योग के लिए सबसे पहली बात है कि हमें देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। कहना सहज है मैं आत्मा हूं, परंतु उस आत्म स्वरूप में रहना थोड़ा मुश्किल है। तो उसका अभ्यास रोज, इसलिए बाबा मुरली में याद दिलाते हैं अपने को, आत्मा समझ बाप को याद करो। दूसरी बात है कि बाबा से हमारे सर्व संबंध जोड़ने हैं। पहले तो जानना है, शिव बाबा को जानना है, फिर जिसके लिए हम गाते रहे त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, उसके साथ सचमुच में हमारे सर्व संबंध होने चाहिए। सर्व संबंध होने से क्या होगा कि हमें सर्व प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा। नहीं तो हम लौकिक संबंधियों से प्यार और सहयोग लेने के लिए आदती हो गए। बचपन में माँ बाप से मोह हो जाता है, बड़े होते हैं तो फ्रेंड्स में मोह हो जाता है, शादी के बाद पति पत्नी का आपस में मोह हो जाता है, बच्चे होने से फिर बच्चों में मोह पड़ जाता है। तो मेरा तो एक के बजाय मेरे तो अनेक हो जाते हैं। तो नेचुरली है हमारा बुद्धि योग सब में बट जाता है। इसलिए बाबा से जो प्राप्त प्राप्ति हुई है और हो रही है और होनी है, उस लक्ष्य में रखकर मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। तो बाबा से प्यार बढ़ाना है, औरों से न्यारा बनना है, अपने देह से भी न्यारा, देह के सर्व संबंधियों से न्यारा, अपनी जो भी वैभव वस्तु है उनसे भी न्यारा। बाबा कहते हैं सबका प्रयोग करो, सबको यूज करो, शरीर को भी यूज करो, संबंधियों को भी यूज करो, अपने पास कार है, मोटर बाइक है, सब यूज करो, मेरा नहीं, बाबा का दिया हुआ। तो ट्रस्टी बनकर यूज करो, श्रीमत अनुसार उसको यूज करो, तो न्यारा रहेंगे। और हम बेहद के सन्यासी हैं, हमारा बेहद का वैराग्य होना चाहिए। ज्ञान के पहले हमें खान पीन में इंटरेस्ट था, थोड़े दिन हो गए पानीपुरी नहीं खाई है, भेलपुरी नहीं खाई है, इडली सांभर नहीं खाया है, साउथ इंडिया वाला कहेंगे दही चावल नहीं मिला है, ये ना हो। बाबा जो भी खिलावे हम खुश रहे, चाहिए ना हो। कईयों को कपड़ों का शौक होता है, हर एक फंक्शन में जाने के पहले नए कपड़े खरीदेंगे, अज्ञानी माताएं या तो जो घरों में रहने वाली माताएं, फंक्शन में जाने के पहले हेयर ड्रेसर के पास जाएंगे, अपना बाल बनवाएंगे और ब्यूटी सलून में जाकर जो भी ब्यूटी के साधन है, आँख के ये करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ कराएंगे, यहाँ कराएंगे आदि आदि। कईयों को अलंकार का शौक है, तो देखते रहते हैं कौन कौन से नए ड्रेस है शोकेस में, कौन से नए अलंकार है, बुद्धि उसमें जाएंगी। फिर पार्टियों में जाएंगे, म्यूजिक डांस, कईयों को स्विमिंग का शौक होता है, कईयों को सर्फिंग का शौक होता है। तो क्या होता है कि जिसका और जिसका शौक होता है वो भागते हैं वहाँ, नेचुरली बाबा की याद नहीं रहेंगी। और फंक्शन में जाना है तो ठीक ठाक बन ठन कर जाना है, तो इसलिए गुजरात में नवरात्रि में आप देखेंगे तो भाई लोग भी नया ड्रेस बनाएंगे, टट्टू लगाएंगे, डांस के स्टेप की प्रैक्टिस करेंगे आदि आदि। और पंजाब में भी देखा है कि लड़के लड़की की शादी है तो सासू ससुरा भी डांस करते हैं, लड़का लड़की तो करते ही है पर ससुरा भी डांस का स्टेप सीखने जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में तो सर्फिंग का स्विमिंग का बहुत शौक। हमारे सेंटर पर भी एक दो भाई ऐसे रहते थे, जैसे मुरली का क्लास पूरा हुआ समुंदर पर चले जाए थे सर्फिंग करने। फिर एकांत प्रिय बनना है। कईयों को बिजी रहने का बहुत शौक होता है, जैसे भी काम पूरा हुआ टेलीविजन शुरू किया, इंटरनेट शुरू किया, फोन शुरू किया कि क्या हो रहा है उसकी इंक्वायरी करें। मैं 75-76 में न्यूजीलैंड में थी, उन दिनों में वहाँ एक दो शहर में भी फ्री फोन कॉल होता था, तो माताएं जैसे भी फ्री होती थी वो दूसरे शहर में भी फोन करेंगी, क्योंकि वहाँ सब नवसारी के आसपास के लोग थे, 20 माइल की रेडियस से सब वहाँ गए थे, तो सब एक दो को जानते थे इंडिया से। पूछेंगे तुम्हारी लड़की का क्या हुआ, फलाने के लड़के का क्या हुआ, कौन शादी किया, कौन मरा, कोई जन्मा, कौन भाग गया, किसने न्यूजीलैंड के लड़के के साथ शादी की, आदि आदि। तो अभी हमको इन बातों से उपराम होना है, और जैसे भी टाइम मिला बाबा की याद में बैठ जाना है, एकांत प्रिय बनना है और एकाग्रता बढ़ानी है। तो जितना वैराग्य होगा, नष्ट मोह होंगे, तो एकाग्रता बढ़ती जाएंगी। एक नामी बनना है, एक का नाम शिव बाबा, क्योंकि कईयों को नाम रूप का प्यार होता है, उसके रूप को याद करेंगे, उसके नाम को याद करेंगे, सारा दिन उसकी महिमा करते रहेंगे। अभी हमें बाबा के नाम रूप को याद करना है, बाबा की महिमा गानी है। इकोनॉमी व्यर्थ नहीं गंवाना, समय शक्ति धन बल कर्म सब जहां जरूरी है वहां लगाना है। व्यर्थ लगाने से हम समर्थ नहीं बनते, और जहां दो वाक्य में काम चलता है तो 20 वाक्य नहीं बोलने हैं। कोई ऐसी आदत होती है रिपीट करते रहते हैं, सारा दिन वही बातें करते रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ना अपना व्यर्थ समय गंवाना है ना औरों का। और ब्राह्मणों का पहला कर्तव्य है ब्रह्मचर्य में रहना, निर्विकारी, कोई भी विकार ना हो। विकार का अंश भी ना हो, क्रोध ना हो, चिड़चिड़ापन भी ना हो, आवाज से नहीं बोलना। बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो, और दृढ़ता होनी चाहिए कि अमृत वेले हमारी बहुत कमाई हो सकती है, तो क्यों न जल्दी उठकर हम बाबा की याद से अपनी कमाई जमा करें। कमाई जमा करने का यही समय है, तो इसलिए आलस्य अलबेलापन छोड़, अमृत वेला उठ, अपनी कमाई करनी है और लक्ष्य रखना है कि बाबा के साथ रहना है, बाबा के साथ सेवा करनी है, बाबा के साथ घर चलना है और बाप समान बनना ही है। तो नेचुरल निरंतर योगी हम बन सकते हैं। तो ये टाइटल तो बाबा ने हमें दिया है, निरंतर योगी, तो इसलिए हमें अपना लक्ष्य बुद्धि में क्लियर रखना है और कमाई के समय दूसरी तीसरी बातों में नहीं लगाना है, क्योंकि कईयों को इतना बिजी रहने की आदत है, जैसे भी फ्री होते हैं झुटका खाना शुरू कर देते हैं। तो ये देखना है कि मुरली के समय, योग के समय हम झुटका या उबासी न खाएं और टाइम पर सो जाए, टाइम पर उठे, तो योग सहज हो जाएगा। देरी से सोएंगे तो नेचुरली है झुटका आएगा। तो अज्ञान में भी कहवत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। ओम शांति।
ओम शांति। हम सबकी परम आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी अपने व्यस्त समय में से, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से हम सब के लिए समय निकाली है। हम सब समझ सकते हैं दीदी जी का यज्ञ में बहुत बड़ा रोल है और आपकी अनेक कार्यों में भूमिका रहती है, लेकिन भट्टी वाले भाई बहनों से अति प्यार है। वैसे तो दीदी जी से सब परिचित ही होंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगा। हमारी दीदी जी 1962 में बाबा के ज्ञान में आई, 66 से आप ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई, 71 में जो पहली विदेश यात्रा गई थी 5 भाई बहनों की, उसमें दीदी जी का जाना हुआ था और वहाँ से फिर दीदी जी की विदेश सेवा प्रारंभ हुई थी, क्योंकि बाकी जो 4 और गए थे वो तो वापस आ गए थे, लेकिन हमारी दीदी जी फिर विदेश में अकेली शेरनी की तरह घूमती रही और सेवा करती रही। तो बड़ी दादी जी ने आपको एक बार शेरनी शक्ति का टाइटल दिया था, क्यों दादी ने कहा था कि शेरनी जंगल में अकेली घूमती है। और एक और खुशी की बात आप सबको सुना देना चाहता हूँ, यज्ञ में पावा का पहला मकान आपके लौकिक पिताजी ने ब्रह्मा बाबा को बना करके दिया था, ये पहला मकान। बड़ी दादी जी ने एक बार कहा था कि बाबा से जब मिल रही थी दीदी, तो बाप दादा ने कहा था कि इनके जैसे, माना दीदी जैसे अगर 21 कुमारी मिल जाए तो मैं चुटकी में स्वर्ग ला दूं। तो मैं पिछले दिनों लॉकडाउन में दीदी को बहुत पूछा था कि वो 21 में से एक तो आप आ गई, बाकी 20 कहाँ है। तो अभी तक दीदी बताई नहीं है, शायद चंडीगढ़ में एक आध मिल जाए दीदी, तो पता करके बताना सभी, क्योंकि बाबा ने कहा था 30 दिन में स्वर्ग ला दूंगा। तो दीदी को ये गर्व रहता है कि मेरे जैसे अभी कोई मिला नहीं है, तो ये बहुत हम सबके लिए गर्व का विषय है और खुशी का क्षण है कि दीदी बाप दादा के नैनों में सदैव बसी रही। तो इस तरह से आज हमारे बीच दीदी जी अपने अनमोल अनुभव युक्त क्लास सुनाने के लिए उपस्थित है। दीदी जी वैसे तो और अनेक विशेषताओं प्रतिभाओं के धनी हैं। आप देखे होंगे दीदी बहुत दिनचर्या में एक्यूरेट, समय पर आती है, क्लास कराती है, योग कराती है, इस उम्र में भी हम सब की पालना करती है। आज का जो सुंदर विषय है सहज योगी जीवन, इसके ऊपर दीदी जी के सुंदर विचारों से हम सब लाभान्वित होंगे। पहला प्रश्न है दीदी, जैसे आपने शुरू में थोड़ा जिक्र भी किया, हमारे विद्यालय के चार विषय हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसमें जो सबसे कठिन विषय तो योग है, फिर इसे हम सहज कैसे कहते हैं?
ये तो अभी हमने बताया। दूसरा प्रश्न
जी दीदी, जो भाई बहन परिवार में रहते हैं दीदी, बहुत सी जिम्मेवारियां होती है, उनको योग में रहना मुश्किल लगता है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि जिम्मेवारी आते ही हमारा योग टूट जाता है, लेकिन वो जिम्मेवारी कारोबार करते हुए भी योग में रहें, उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे?
मेन वस्तु ये है, जिम्मेवारी में मेरापन नहीं हो, मेरी जिम्मेवारी नहीं, बाबा की जिम्मेवारी है। बाबा करावनहार है, मैं करनहार हूँ। बाबा के बच्चे हैं, बाबा का घर है, बाबा का परिवार है, मुझे ट्रस्टी बनकर उनको संभालना है। तो अपने को ट्रस्टी समझना है, गृहस्थी नहीं, निमित्त समझना है, करावनहार बाबा है, और बैलेंस रखना है, स्व को भी संभालो, घर को भी संभालो, सेवा को भी संभालो। बाबा कहते हैं 8 घंटा शरीर को दो, सोना, खाना पीना, स्नान करना दिया दिया, 8 घंटा अपनी नौकरी को दो या घर काम को दो, तो भी 8 घंटा अपनी सेवा के लिए, 8 घंटा नहीं, कम से कम 2 घंटा निकालो, 1 घंटा योग, 1 घंटा मुरली। तो ये जब करेंगे तो नेचुरली आपकी उन्नति होती रहेगी।
जी दीदी, किसी का प्रश्न है दीदी, जब तक हम मधुबन में रहते हैं बाबा से योग युक्त रहना सहज लगता है, लेकिन जैसे ही अपने लौकिक घर में जाते हैं थोड़े दिन के बाद जो स्थिति यहाँ रहती है वो स्थिति बनी नहीं रह पाती है।
बाबा कहते हैं जहां भी रहो अपनी दिनचर्या मधुबन जैसी बनाओ, अपनी दृष्टि वृत्ति सब अलौकिक बनाओ, भाई भाई की दृष्टि सबके प्रति हो, मेरा मेरा ना हो, मैं ना हूं, क्योंकि मैं और मेरा सारी गड़बड़ करता है। मेरा कहने से मोह पड़ता है, मैं कहने से अहंकार आ जाता है, मैंने किया, मैं विशेष आत्मा हूं, मैंने इस व्यक्ति को बहुत अच्छा कोर्स कराया, आगे बढ़ाया आदि आदि, तो ये अहंकार भी ना हो। और बाबा बाबा करते रहो, वाह वाह करते रहो, तो जितना ज्ञान युक्त योग युक्त होंगे सब ठीक हो जाएंगे।
जी दीदी, आपका आदि पिता आदि माता ब्रह्मा बाबा मम्मा को देखने का सौभाग्य मिला। जानना चाहते हैं दीदी, बाबा मम्मा की योग की स्थिति कैसी रहती थी?
दोनों सदैव योग में रहते थे। यह ज्ञान मनन मंथन करते रहते थे। मम्मा जो ज्ञान मनन मंथन करती थी, तो क्या था, उनके क्लासेस इतने अच्छे होते थे, जो सब अटेंड करते थे। जैसे जानकी दादी के क्लास थे, सब बहुत फायदा लेते थे। और ब्रह्मा बाबा धीरे 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 बहुत ही उपराम हो गए थे। एक शुरू में तो उनको सर्विस न्यूज सुनने का शौक रहता था, और सर्विस के लिए रोज डायरेक्शन देते रहते थे, पर अंत के समय कोई सर्विस की बातें आधा घंटा सुनाएंगे, अंत में बाबा कहेंगे बच्ची क्या कहा, उसको फिर से 5 मिनट में रिपीट करना पड़ता था। या बाबा कहता था जल्दी सुनाओ, थोड़े में सुनाओ। तो संजो बाबा योग युक्त रहता था, और योग में भी बाबा के इतनी पावर थी, क्योंकि शुरू में तो कोई ज्ञान इतना गहराई में नहीं था, तो बाबा के सामने बैठते ही उन्होंने को आत्म अनुभूति होती थी और शक्ति मिलती थी। एक माता, आप कोई कोई पुराने जानते होंगे, टिकन दादी, ओम शांति। टिकन दादी बेंगलोर देखते थे, और उसके परिवार से उसकी काफी बहनें यान में थी, तो उसका पति गुजर गया था और भी दूसरे एक की मृत्यु कुछ मास पहले हो गई थी। तो वो जब बाबा के पास पहले दिन सत्संग में आई, बाबा ने पूछा तुम कौन हो, कहती मैं दुखी आत्मा हूँ। फिर बाबा ने आत्मा परमात्मा का 10-15 मिनट में ज्ञान दिया और दृष्टि दी, और अंत में पूछा तुम कौन हो, मैं सुखी आत्मा हूँ। तो समझो बाबा की दृष्टि में इतना प्यार और शक्ति थी, जो 15-20 मिनट में दुखी से सुखी बन गई। तो संजो मम्मा बाबा ने माँ बाप के रीत से पालना की, मेनली योग और प्यार के द्वारा।
जी दीदी, दीदी आपका व्यक्तिगत अनुभव जानना चाहते हैं। आपकी स्थिति इतनी उच्च कोटि की बनी रहती है, आप योग को सहज कैसे बना पाती हैं?
मेन बात ये है कि मैं अपनी जिम्मेवारी नहीं समझती। बाबा का यज्ञ है, बाबा की जिम्मेवारी, बाबा के बच्चे हैं, उनको ज्ञान है। अभी भाग्य बनाना न बनाना उनके हाथ में है। तो मैं साक्षी दृष्टा बनकर हर एक का पाठ देखती रहती हूँ। प्रकाशमणि दादी को भी कोई कंप्लेन करते थे, मधुबनवासी ये है वो है, दादी हमेशा कहती थी अच्छा 95% तो अच्छे हैं ना, 5% तो कुछ न कुछ होगा ही। तो दादी हमेशा पॉजिटिव रहती थी, तो हमें भी पॉजिटिव रहना सिखाया।
जी दीदी, बहुत अच्छा। दीदी, दीदी को देखते ही हम सब का योग लग जाता है। जैसे दीदी बाबा के बारे में बता रही है, ऐसे ही प्रैक्टिकल में आदि देव आदि देवी मम्मा बाबा के बताए हुए रास्ते पर अक्षरशः हमारी दीदी पालन करती है, उस परंपरा को आगे बढ़ाती है। दीदी सहज योग
सातवां लो।
जी दीदी,
नेक्स्ट।
कुछ भाई बहने सुबह 2 बजे उठ जाते हैं दीदी, फिर बाद में झुटका खाते हैं, या फिर दिन भर वो योग तो करते हैं लेकिन दिन भर चिड़चिड़ाते रहते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या शिक्षा देंगे?
मेन बात ये है कि हम ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं और हमको काम भी करना होता है, चाहे कहाँ भी है
जी।
सेंटर पर रहते हैं, घरों में रहते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, करना ही है
जी।
तो इसलिए बाबा कहते हैं 10 बजे सो जाओ, 3:30 बजे उठो जी। क्योंकि 2:30 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे उठ जाते हैं और सारा दिन काम भी करना होता है
जी।
तो नींद पूरी नहीं होती है तो थकावट होता है, और थकावट है तो चिड़चिड़ापन होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बैलेंस रखो, शरीर की भी संभाल करो
जी,
उसको भी ठीक आराम दो, ठीक 3 टाइम भोजन दो, और कुछ बीमारी है तो दवाई भी करो। तो जितना बैलेंस रखेंगे तो आपको अवस्था आनंदमय रहेंगी और सबकी दुआएं मिलती रहेंगी
जी। जी दीदी, दीदी अगला प्रश्न है। अभी अभी हम सब ने हम सब की परम आदरणीय राजयोगिनी यशु दादी जी का प्रथम पुण्यतिथि मनाए हैं। दादी जी के साथ आपका कोई विशेष अनुभव या कोई प्रसंग हो तो हम सुनना चाहते हैं दीदी।
दादी जी के साथ कोई विशेष तो हमारा अनुभव नहीं है, पर हमने देखा दादी यीशु हमेशा बाबा से ऑनेस्ट, वफादार, सिंपल और एक्यूरेट
जी। दीदी,
तो बाबा का भी उनमें ट्रस्ट था, दादियों का भी ट्रस्ट रहा। तो ब्रह्मा बाबा व्यक्त होने के बाद भी जब तक दादी जीवंत थे उन्होंने अकाउंटिंग का काम चालू रखा और गोलक भाई की मदद से कारोबार करती रही
जी। जी दीदी,
हम जब भी दादी को पैसा देते थे फौरन जाकर गोलक भाई के ऑफिस में, अकाउंट ऑफिस में पहुंचा देती थी
जी। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न, आपने वैसे सुबह थोड़ा जिक्र किया था दीदी, लेकिन मैं चाहता हूँ यूट्यूब चैनल जो देख रहे हैं और आगे भी देखें उन सबको आपके द्वारा ये सुंदर संदेश मिले। आजकल एक नया वातावरण बना हुआ है, पिछले दिनों इसकी खूब चर्चा भी हुई, कि फलाने में बाबा आते हैं, कभी कहते हैं मम्मा आती है, नए नए भाई बहनों के साथ में कुछ पुराने भी प्रभावित हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी दीदी, आप अपने बाबा के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
मैं यही कहूंगी कि मम्मा बाबा का अब अव्यक्त ही पाठ है
जी,
व्यक्त में किसी के भी तन में नहीं आते
जी।
बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि बाबा मधुबन में ही आएंगे, मुकरर तन में ही आएंगे
जी।
और बाकी जो भोग के टाइम ध्यान में चले जाते हैं और कहते हैं मेरे में मम्मा बाबा आती है, ये है गलत। तो इसलिए हमें किसी में भी विश्वास नहीं करना। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो जानते हैं कि बाबा ने पहले ब्रह्मा का रथ लिया, दूसरा गुलजार दादी का रथ लिया, अभी बाबा ने तीसरा रथ नहीं लेना है न लिया है। ये जो बहन की मैंने सवेरे बात की
जी दीदी,
बबीता बहन यहाँ ही थी, यहाँ ही उसने ये पाठ शुरू किया और हमने उसको यहाँ से निकाल दिया। क्यों? हमने कहा कि बाबा और किसी के तन में नहीं आ सकता
जी।
दूसरा, उसकी चाल चलन ऐसी थी, सवेरे 8 बजे उठती थी और खाना पीना बैठना उठना बातचीत करनी सारा समय द्वारका भाई के साथ करती रही
जी।
तो बाबा का रथ तो इतना पवित्र चाहिए कि किसी के साथ फैमिलियरिटी ना हो
जी।
और पवित्रता धारणा, क्योंकि दादी गुलजार सवेरे शाम योग करती और कराती थी
जी।
उनके कमरे में कई लोग जाते थे दादी के सामने योग करते थे, तो दादी का जो योग युक्त चेहरा था, चलन थी वो, और निसंकल्प देवता बाबा उनको कहता था
जी,
अपना संकल्प नहीं चलाते थे। तभी तो बाबा ने वो पवित्र रथ लिया। तो इसलिए बाबा ने कई समय तो भोग में ध्यान में जाने का, संदेश लाने का भी बंद कर दिया है
जी।
मैं समझती हूँ 73 से ये सारा पाठ बंद कर दिया था, सिर्फ गुलजार दादी का और अभी शशि बहन और रुक्मणी बहन दो का पाठ है
जी। जी दीदी, तो सबको क्लियर हो, दीदी हमारे वरिष्ठ बाबा मम्मा के साथ के अनुभवी, और आप अपने अनुभव से बता रहे हैं कि बाबा मधुबन के अलावा कहीं और नहीं आते। और थोड़ा सा और आप सबको बताना चाहता हूँ, जैसे दीदी ने बताया कि यहाँ जब बबीता थी तो सेवाधारी के रूप में थी, यहाँ कोई समर्पित रूप से नहीं थी, और उनकी एक्टिविटी को देख कर ही दीदी ने उसको यहाँ से निष्कासित किया था। तो चूंकि नए नए भाई बहने कई बार उनके कार्यक्रम को देखते हैं, टीवी यूट्यूब में देखते हैं, तो देख करके प्रभावित होते हैं, इसलिए आप सबको जानकारी हो कि इस तरह से बाबा कहीं और नहीं आते। आपसे कोई चर्चा करे तो भी इसका जवाब अच्छी तरह से आप सब दे सकते हैं। दीदी एक प्रश्न और है कि हमारे योग में और बातों के अलावा ये सब बातें भी विघ्न डालते हैं। कई बार अभी पिछले दिनों दो दिन बहुत चर्चा हुई दीदी, जहां देखो वहां इसकी ही चर्चा होने लग गई, तो क्या ऐसी बातों को सुना अनसुना कर देना चाहिए?
डेफिनेटली
जी,
क्योंकि सुनना, चर्चा करना, बात फैलानी, क्योंकि उसी रीत से बात ऐसी फैल गई
जी,
देश विदेश में
जी,
सब उसकी चर्चा करते हैं। आजकल तो इंटरनेट का साधन ऐसा है कि कुछ ही घड़ी में संदेश सारे विश्व में पहुंच जाता
जी। जी दीदी, अगला प्रश्न है दीदी, सहज योगी जीवन के लिए हमने देखा दीदी आप अपनी दिनचर्या में बहुत व्यवस्थित रहते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है दीदी का टाइम टेबल उठने से लेकर के सोने तक का। हमारे भाई बहनों को अपनी दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित रखना चाहिए जिससे उनका योग सहज रहे?
बाबा ने हमको टाइम टेबल दिया है, रात को 10 बजे, देरी से देरी 10:30 तक सो जाओ
जी,
और उठो 3:30-4:15 के बीच में, ताकि 4 से 4:45 हमारा योग हो। 4:45 बजे के बाद स्नान पानी आदि करो, फिर यहाँ तो एक्सरसाइज कराई जाती है 6 से 6:30 एक्सरसाइज, 6:30 से 7 योग। तो जहां भी हो सवेरे अमृत वेला, मुरली के पहले का योग और मुरली टाइम पर सुनना
जी दीदी।
चाहे क्लास में जा सको तो ठीक है, नहीं तो हमारे तो पीस ऑफ माइंड अवेकनिंग चैनल दोनों पर मुरलियां आती है
जी।
उसके बाद कर्मयोगी रहकर कर्म करो, क्योंकि गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, घर की सफाई करनी है आदि आदि, तो वो करो। दिन में चाहिए तो 1.5 घंटा आराम करो
जी।
फिर शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में कम से कम 1/2 घंटा योग करो
जी। जी जी,
कोई भी टाइम अपना फिक्स करो 1/2 घंटा शाम को, और सोने के पहले अपना चार्ट देखो कि आज दिन में मैंने कितनों को सुख दिया, किसी को दुख तो नहीं दिया
जी,
ज्ञान का मंथन क्या किया, योग हमारा कैसा रहा, क्या सेवा की, अपना चार्ट देखो। तो उस अनुसार फिर यदि कोई गलती की है तो रात को अपने मन में दृढ़ता रखना है कि ये गलती फिर से ना हो
जी। दीदी लास्ट प्रश्न है दीदी, वर्तमान समय चारों तरफ बहुत नकारात्मक वातावरण है, उसका प्रभाव हम बच्चों पर ना पड़े, इसके लिए कौन कौन सी बातों को पर विशेष ध्यान रखना होगा?
मेन बात है हमारी स्थिति ऐसी ऊंची रहे जो परिस्थिति या व्यक्ति के संस्कार हमें हलचल में ना लाए। साक्षी दृष्टा होकर हरेक का पाठ देखो और ड्रामा पर अडोल रहो, जो भी हो रहा है अच्छा है, जो पास हुआ अच्छा था, जो फ्यूचर होगा बहुत अच्छा, तो ये ड्रामा पर अडोल रहो, और जो भी हो रहा है कर्मों का फल क्यों क्या का प्रश्न न हो, क्योंकि यदि हमारी अपेक्षा रहती है कि सब ऐसे हो तो हमको वो नई अपेक्षा पूरी होती है तो दुख होता है
जी।
हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हम हलचल में भी ना आए, ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी स्थिति अचल और अडोल बनानी है। कोई क्या भी करे, कुछ भी करे, हर एक का अपना अपना पार्ट है।
जी दीदी, मैं समझता हूँ आप सबको इस विषय के ऊपर बहुत क्लियर हो गया होगा। दीदी जी का आगे का कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ा सा दीदी को जाना होगा अभी, तो इसलिए जितना भी समय हम सबको दी, एक बार पुनः आप सब अपने खुशी व्यक्त कर सकते हैं। और आपका दीदी बहुत बहुत दिल से सबके तरफ से धन्यवाद। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठे।